Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Chidambaranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
श्वास तो वही बोध करा रही है, श्वास तो वही चिंतन करा रही है, कर ही रही है, लेकिन आपने श्वास को देखा कब? आपने श्वास को जाना कब? आपने श्वास को समझा कब? आप तो दुनियादारी में लगे रहे, व्यवहार में लगे रहे, अहर निशम। कमाल की बात देखिए, आप सो जाते हैं लेकिन आपका श्वास बंद नहीं होता, और श्वास के साथ आपने अपने चिंतन को डाल दिया, तो भले ही सोते रहो, चिंतन आपका तब भी होता रहेगा। आहार निशम कहा, यह नहीं कहा कि जब तक जागते हो तब तक, नहीं जी, जागते हो तब तक नहीं, सो रहे हो तब भी। क्यों सो रहे हो तब भी कैसे है? अरे भाई, आत्मा कभी सोता थोड़ी है, आत्मा कभी शयन नहीं करता। बुद्धि सोई लेकिन प्राण जाग रहा है, श्वास चल रहा है, उस श्वास में चिंतन को डालिए कि आप भले ही सो जाते हो, लेकिन अगर आपने अपना पंखा चालू कर दिया है वो तो चलता है, आपने एयर कंडीशन चालू कर दिया वो तो चलता रहेगा, कि आपके सोने पर वो भी बंद हो जाएगा? नहीं, और वो अपनी शीतलता प्रदान करता रहेगा। ऐसे ही अपनी श्वास में उस चिंतन को डालिए और आप सो जाइए, सोते रहिए, लेकिन सोते सोते भी वो श्वास अपनी ज्ञान की वृत्ति को जागृत रखेगा, वो चिंतन बनाए रखेगा। जब भी नींद खुलेगी, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, वही चिंतन होगा। अहर निशम ब्रह्मण ये रमनता, सदैव उसी में रमण करते हैं। वाह, सिर्फ सोचते नहीं है, उसी में आनंदित होते हैं, मस्त रहते हैं। कौपीन बनता खलभाग्य बनता, ये कौपीन वान बहुत भाग्यशाली, तो आनंद भावे परितुष्टि बनता। आनंदित होने के लिए किसी विषय की जरूरत नहीं है। यह स्वाद परित्रिव स्यादात गीता का सबसे बेहतरीन श्लोक है, और ये चुनना जरा कठिन है कि गीता में कौन सा श्लोक बेहतरीन है, मुश्किल है। महाभारत सुन रहे थे, गोविंद गुरु जी कह रहे थे कि लोकमान्य से पूछो तो वो कुछ कहेंगे कि ये सबसे बढ़िया, विवेकानंद से, तो मैं सोचने लगा कोई मुझसे पूछे तो मैं क्या कहूंगा कि गीता का सबसे बढ़िया श्लोक कौन सा। सही बताऊं, मैं बैठा था तो मैं सोच रहा था खुद कि मेरे से अगर किसी ने पूछा कि गीता का सबसे बढ़िया श्लोक कौन सा, तो मैंने कहा मैं तो मुश्किल में पढ़ने वाला हूं, तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सुविधा चाहिए, क्या एक अध्याय में से एक श्लोक सुनने की छूट दो। एक अध्याय में से एक श्लोक सुनने, तो 18 श्लोक सुनने की छूट दो तो मैं बताऊं फिर, नहीं तो रहने दो, फिर हमारे लिए गीता सबसे बेहतरीन है, सबसे बढ़िया है, क्योंकि पुष्पों की गुच्छों में से कौन सा फूल अच्छा है ये कोई नहीं चुनता। पुष्प बगीचे से चुने जाते हैं, लेकिन गुच्छ से पुष्प कौन चुने? समझ रहे हैं मेरी बात? पुष्प गुच्छ, क्या क्या बोलते हैं उसको, गुलदस्ता, गुलदस्ते में भी कुछ पूछोगे कि इसमें कौन सा फूल अच्छा, अरे पूरा ही अच्छा है। गीता तो पूरी ही अद्भुत है, और उन अद्भुत पुष्पों में ये एक पुष्प है, यस्त्वात् प्रतिरेव स्यादात् तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान कहते हैं यस्त्वात् प्रतिरेव, अगर किसी से प्रेम हुआ तो आत्मा, अगर किसी से तृप्ति हुई तो आत्मा, और अगर किसी में तृप्ति हुई तो आत्मा। प्रेम हुआ तो आत्मा से हुआ, तृप्त हुए तो आत्मा से हुए, और तृप्त हुए तो आत्मा में हुए। आत्मनि एव आत्मना, आत्मा में आत्मा के द्वारा, ये क्या नाटक है? बोले नाटक यही है कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, कि जैसे बिजली की खेल में और बहुत सारी चीजें बना दी जाए तो लाइट के द्वारा लाइट का प्रकाश का खेल हो रहा है, चीज एक ही है सिर्फ प्रकाश। कि आप फिल्म देखते हैं वो प्रकाश का ही खेल है और क्या है, प्रकाश में प्रकाश ही हो रहा है और कुछ नहीं हुआ, कमाल की बात है। सारी दुनिया आपको उस पर्दे पर दिखाई पड़ती है, सारा संसार आपको नजर आता है, लेकिन अद्भुत बात है प्रकाश के अलावा और वहां कुछ नहीं है। तो आपको प्रेम हुआ, आप कहो कि फिल्म बड़ी अच्छी है, नहीं जी प्रकाश अच्छा था। आप कहो फिल्म में बड़ा मजा आया, नहीं जी प्रकाश में मजा आया। आप कहो कि फिल्म में हमारा मन लग गया, नहीं जी प्रकाश में लगा था। समझने का फेर है, प्रकाश के द्वारा प्रकाश में ही मस्ती थी। और आपकी सारी फिल्म बेकार है अगर प्रकाश न हो। कभी देख लेना, पावर कट करके फिर फिल्म देखो, देखते हैं कैसी दिखती है, देखेगी है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है फिल्म का, बिना प्रकाश के कुछ नहीं है। और दिखने वाली सारी चीजें प्रकाश ही हैं, सिर्फ कलाकृतियां नजर आती हैं। क्या बात है, आपको नहीं लगता कि ये पर्दा है, इस पर्दे में प्रकाश चल रहा है और आप मस्त हुए जा रहे हैं, लेकिन है सिर्फ प्रकाश। और ध्यान रखना, फिल्म के पर्दे में थोड़ा सा फर्क यह है कि प्रकाश अलग है और तुम देखने वाले अलग हो, लेकिन यहां तो और नाटक विचित्र है कि प्रकाश भी हम ही है और देखने वाले भी हम ही है, खेलने वाले भी हम ही है, देखने वाले भी हम ही, ताली बजाने वाले ही हम ही, आनंद लेने वाले दर्शक भी हम ही है और दर्शन भी हम ही है। नहीं नहीं, दर्शक भी हम ही है, दर्शन भी हम ही है और दृष्टि भी हम ही है। दिखाई पड़ने वाला दृश्य भी हम, देखने वाली दृष्टि भी हम, और इन दोनों को शक्ति देने वाला सब कुछ हम, दृष्टा भी हम, कुछ भी हमारे अलावा नहीं। यह अद्भुत है। स्वानंद भावे परितिष्ठवंत, स्वानंद भावे अपनी मस्ती में। और ध्यान रखना, अपनी ही मस्ती है, इसके अलावा और कुछ नहीं, बाकी सब भ्रम है। नींद में, गहरी नींद में आप सोते हो तभी आपको वास्तविक मस्ती का अनुभव होता है, तभी आपको वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। उस आनंद की अनुभूति और कहीं नहीं होती जो गहरी नींद में होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? सीधा सीधा अर्थ है कि मस्ती यही है और कहीं नहीं है। बस इसको जागृत में समझ लो, गहरी नींद के आनंद की अनुभूति को जागते हुए देख लो, आप ज्ञानी हो गए, आप सिद्ध हो गए, कुछ शेष नहीं है, आपको सब समझ में आ गया। और मैं कई बार कहता हूं, गाढ़ निद्रा की अनुभूति को खुली हुई आंखों से अनुभव कर लो, यही ज्ञान की सिद्धि है। परमात्मा जिस आनंद की अनुभूति आपको नींद में अनुभव करवाता है, उसे आप जागते हुए अनुभव कर लो, यही ज्ञान की सिद्धि है। तो फिर संसार से दुखी होकर जो नींद के लिए भागते हो, हैं? कि आप बहुत थक गए, आप रहने दो, आप हमको सोने दो, तो जो थकान अनुभव करके नींद की तरफ भागते हो, तब जागने पर अनुभव करने के बाद में समाधि की ओर भागोगे, अंदर की ओर भागोगे, कि जहां कुछ मालूम पड़ा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, चलो अंदर बैठ जाओ, किसी ने कुछ कहा बुरा लगा तो आ जाओ अपने पास जहां आनंद है। भगवान ने गीता में कहा कि कछुए की तरह अंदर समेट लेता है, कुर्मुंगा नीव, समेट लेता है, जाता कहां है, अरे अपने पास जाता है, जैसे कि नींद में समेट लेते हो ऐसे ही। स्वानंद भावे परितुष्टिमंत स्वशांत सर्वेंद्रिय वृत्ति, वाह वही वाली बात आ गई, लो कुर्मुंगा नीव आ गई, शांत सर्वेंद्रिय वृत्तिमंत, इंद्रियों को समेट लेता है, शांत कर लेता है, अंदर समेट लेता है कि जहां खतरा महसूस हुआ आ जाओ, आनंद का सागर जहां है वहां पर आ जाओ, डुबकी लगाओ। कि जब आप धूप से पीड़ित होते हैं, धूप घाम क्या बोलते हैं है ना, धूप से पीड़ित होते हैं और सरोवर दिखाई पड़ता है तो आप डुबकी लगा दें। जहां डुबकी लगा क्या बात है। ऐसी संसार में जब भी दुख की अनुभूति थोड़ी भी महसूस हुई, ये तुरंत स्वानंद भाव ये प्रतिष्ठा पर डुबकी लगाए, तुरंत डूब गए, इंद्रियों को भी समेट लिया तुरंत। न अंतम न मध्यम न बही स्मरंत, न बाद की सोचता है, न मध्य की सोचता है, न बाहर की सोचता है। सही बात यह है वो कुछ नहीं सोचता है, सिर्फ अपने आप का अनुभव करता है। सोचने के लिए कोई दूसरी जगह तो हो, सोचने के लिए कोई दूसरी जगह तो बनाए पहले। जो भी सोचेगा वो परमात्मा को हटाने वाली चीज होगी, परमात्मा के अतिरिक्त जब कुछ है ही नहीं तो दूसरा क्या सोचेगा, कोई और विकल्प नहीं। कॉपी न बनता खल भाग्य बनता। ज्ञान तत्व का उपदेश अब तक किया इतनी चीजों में और उसको बनाया संवारा समझाया कि कैसे आप वेदांत वाक्यों में रमण कर सकते हैं। जिस बात को पहले श्लोक में कहा वेदांत वाक्य सुसदा रमंतो रमंतः, उन्हीं बातों को आगे स्पष्ट करते चले गए कि कैसे आप वेदांत वाक्यों में रमण कर सकते हैं, किन किन चीजों का आशय लेकर के आप वेदांत वाक्यों का रमण कर सकते हैं। कि देहाभिमान को दूर करके, कि आत्मा को आत्मा में देख करके, कि सदैव ब्रह्मचिंतन करके, आत्मचिंतन करके, कि अपने आप में संतुष्ट होकर के, कि इंद्रियों को समेटने का काम करके। ये सारी बातें एक एक बातें ऐसी हैं कि आप एक एक बात पर महीना महीना भर चिंतन कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि सत्संग की बातों को एक बात का आप प्रयोग करो, है ना, एक बात का सत्संग की, और महीने भर का प्रयोग करो। मैंने पहले भी शायद ऐसा कहा है, अभी भी कहता हूं, करना चाहिए, तब आपको उसका परिणाम पता चलेगा। आप सुनते हो बातें अच्छी लगती हैं, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन आप एक बात का प्रयोग करना शुरू करो, उसका फल देखो, परिणाम नहीं समझ में आया तो दूसरी बात का प्रयोग करो, तीसरी बात का प्रयोग करो। जो प्रयोग में आ जाए उसको चलने दो, जो अच्छी लग रही है उसे चलने दो, लगातार सतत चिंतन में बहने दो, बहुत अच्छा लगेगा। और इसलिए शास्त्रकारों ने तरह तरह के उपाय कहे, तरह तरह के उपाय बताए कि आपको स्वस्थ रहना है तो आप ये खाना शुरू करो, बादाम खाना शुरू करो रोज, नहीं एक महीना खा के देखो, नहीं जचता है तो फिर कुछ दूसरा देखो, दूसरा ट्राई करो। मूल उद्देश्य आपका स्वास्थ्य है, एक चीज से नहीं बनता है तो दूसरी चीज का प्रयोग करो, दूसरे से नहीं बनता है तो यहां चीजों की कमी नहीं है, बहुत ऑप्शन है, विकल्प बहुत है। और कुछ नहीं समझ में आता है तो इंद्रियों को खींचना शुरू करो, समेटना शुरू करो। मैं अपने बचपन की घटना बताऊं, बहुत छोटा था तब की, देखो संस्कार तो पिछले जन्म में ही बन जाते हैं ना, ऐसा कहते हैं, प्रारब्ध ही। आदमी कुछ नहीं सिखाता फिर भी कुछ चीजें आदमी को अपने आप आती हैं। ये प्रवचन करना मुझे पता नहीं पिछले जन्म से आता है, पता है आपको, आप जान के चकित होंगे। मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, 5-6 साल का भी रहा होगा इतना मुझे याद है, और मैं छोटे छोटे बच्चों को बिठा करके उन्हें सत्संग करवाता। हमारा प्रेमपुरी बहुत पहले से बना हुआ है। और आप आश्चर्य करेंगे, मैं सिखाता क्या पता है आपको, उन बच्चों को क्या सिखाता, कि अगर कोई चीज तुमने देखी आंखों से और उसको पाने की इच्छा हुई तो अपनी आंखों को बंद कर लो। ये मैं सिखाता हूं उनको, सोचो इतनी छोटी अवस्था, कि कानों से सुनाई पड़ रहा है। वो गांव में वो बेचने वाले कुछ आते हैं तो वो चिल्लाते हैं तो कानों से सुनाई पड़ता है, बच्चों के मन में इच्छा होती है, वो भोंपू भी बजाते हैं बच्चों को ही खींचने के लिए। तो मैं उन बच्चों को सिखाता बिठा के कि अगर कान से भी सुनाई पड़े तो कानों को बंद कर लो, फिर भी कि आंखों से देख लिया कि कानों से सुन लिया, भले ही बंद कर लिया लेकिन वो बात मन में तो चली गई, अब मन तो नहीं मानेगा तो वहां से उठ के भाग जाओ। अब इतना ही आता था, इसे आगे आता नहीं था, इतना ही याद था। सशांत सर्वेंद्रिय व्यक्ति बनता, इंद्रियों को शांत करो। अच्छा, इंद्रियां हमारी ज्यादा फड़फड़ाती हैं कि हमने आंख बंद करने का निश्चय किया तो आंख कहते कि नहीं जरा देखो खोल के। अच्छा, बड़े चालाक लोग होते हैं, आंख बंद की हुई है और देखने की इच्छा है तो देखेंगे लेकिन आंख खोलेंगे नहीं, देख लेंगे सब। अच्छा, कौन कहां है लगेगा ध्यान कर रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है लेकिन खट हो तो सबसे पहले कान मालूम है कि कहां है। ये नहीं है सशांत, बच्चे की तरह उनको शांत करो। अगर आंख कहे भी तो कहे ठीक है जाने दो, और आंख कहेगी, आंख का कहना दोष नहीं है क्योंकि संस्कार ऐसा ही है, स्वभाव ऐसा ही है। अगर आंख आपकी खुलने की बात कहती है तो ये आंख का दोष मत समझो, हमने इसको दोष माना इसलिए हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं। और मैं कहता हूं आप जितना दबाने की कोशिश करोगे वो आंख उतना ही फड़फड़ाएगी, और जितना फड़फड़ाएगी वो आंख आपको मिथ्याचारी बना देगी, मिथ्याचार से उच्छते, आपको धोखेबाज बना देगी, पाखंडी बना देगी। इसलिए उसे दबाओ मत, तो उसे समझाओ जाने दो, देखा तो हुआ है, सब देखा है, क्या देखना शेष है, अभी इसको देखते हैं। और मैं कहता हूं आप समझाने की कोशिश करो, फिर देखो आंख समझती है कि नहीं, तुरंत समझ लेगी। देखो तुम्हारी इंद्रियों को भी प्यार की जरूरत है, तुम डंडा लेके खड़े हो, तुम्हारे मन को भी प्यार की जरूरत है, तुम तो उसको सिर्फ मार करके सिखाना चाहते हो। ये आजकल का जमाना है, बच्चे अब डंडे से नहीं डरते है ना, अब तो फिल्म वालों को भी समझ में आ गया कि प्यार से डर लगता है, बच्चों से मार से डर नहीं लगता, समझ में आया। और मैं मानता हूं कि अगर आप अपने मन के साथ अपनी इंद्रियों के साथ प्यार से प्रस्तुत आए तो जितना कठिन मालूम पड़ता था वो सहज हो जाएगा, जितना कठिन मालूम पड़ता था कि ध्यान करना, कि चिंतन करना, कि जप करना, कि कथा सुनना, जितना कठिन मालूम पड़ता था वो सब सहज हो जाएगा। तब जब आप अपने मन को प्यार से समझा लो। किसी बच्चे को डंडे के बल पर बिठा सकते हो लेकिन उसको रोक नहीं सकते, जहां उसे मौका लगेगा भाग जाएगा। लेकिन किसी बच्चे को समझा लो कि बेटा बैठो फिर हम वहां चलेंगे, फिर तुम जो कहोगे वो करेंगे, किसी बच्चे को समझा लो, वो बच्चा शांत हो जाएगा कि चलो आधे ही घंटे की बात है, बैठ जाते हैं, फिर तो वही होने वाला है जो मैं चाहूंगा। उसको प्यार से समझाओ, मानेगा, फिर वो रुकेगा, तुम्हें तंग नहीं करेगा। शांत इंद्रियों को शांत करो, ध्यान देना, आप शब्दों पर ध्यान देना। यह नहीं कहा कि इंद्रियों को दबाओ, कि इंद्रियों को रोको, कि इंद्रियों को पकड़ो, कि इंद्रियों को खत्म करो। यह नहीं कहा कि आंख को फोड़ डालो, कि कान में वो क्या बोलते हैं उसको रुई लगा लो, सुनाई नहीं पड़ेगी कुछ। क्या क्या बंद करोगे, कल को तो नाक भी बंद करनी पड़ेगी, फिर परसों से जिह्वा कटवानी पड़ेगी, क्या क्या कटवाओगे। ये परमात्मा ने ऐसी चीजें बनाई हैं, दिमाग खराब हो जाएगा अगर आप कटवाने पर तैयार हो जाओ तो, है ना, कि आंख फोड़ लो, कान खत्म कर दो, नाक काट डालो, लेकिन त्वचा का क्या करोगे जो स्पर्श का अनुभव करती है। पूरी चमड़ी उधेड़ करके निकालोगे क्या? मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। तो स्वशांत उसको समझाइए, शांत करिए, शांत। जैसे वो क्रोध में आता है, कोई क्रोध में आता है तो आप क्या करते हैं? आप डंडा लेके करे गुस्सा का शांत करो, तब तो उसको और क्रोध आने वाला है। आप अगर किसी को डंडे से शांत करोगे तो शांत होगा? नहीं नहीं, उसको तो और क्रोध आएगा। तो अब आप कहते हैं कूल डाउन, शांत शांत। अच्छा, सामने वाला गुस्सा करे, आप प्रेम से बोलते हैं शांत शांत, जो तुम कह रहे हो वो होगा लेकिन थोड़ा सा शांत। सुशांत सर्वेंद्रिय वृत्ति बनता, बहुत प्यारी बात लगी। समय नहीं है लेकिन सब समझ में आ गया आपको, मुझे विश्वास है। ज्ञान की बात कहने के बाद अंत में अब एक प्यारा सा साधन बोलते हैं कि ये सब नहीं हो तो इतना तो कर लो कम से कम, पंचाक्षरम पावनम उच्चरंत, नमः शिवाय बोलिए और जाने दीजिए सबसे, इतना तो कर सकते हो। पंचाक्षम पावन उच्चरंता पतिम पशुनाम हृदय, और हृदय में भगवान का चिंतन करो। जो वाणी से बोल रहे हो वो मन में भी सोचो, अर्थ ये है। जिनका नाम उच्चारण कर रहे हो तो सिर्फ वाणी तक भगवान न रह जाए, जरा यहां तक आने दो। तो हम कृष्ण बोलते हैं लेकिन वो यहीं तक रह जाते हैं। और बताएं आपको, कृष्ण बोलते हैं तो या तो यहां तक आते हैं, अगर अंदर गए तो ऊपर चले जाते हैं दिमाग में, फिर समझने लगते हैं अच्छा ये भगवान हो सकते हैं, भगवान ऐसे थे। यानी संदेह पैदा होने वाली वृत्ति पैदा होती है, भगवान को दिमाग में ले जाते हैं हम, जबकि भगवान दिमाग से समझ में आने वाले हैं नहीं, हृदय से समझने वाले हैं, समझ में आने वाले हैं। इसलिए हृदय में लेके जाओ। तो जो सोच रहे हो वही, जो कह रहे हो वही चिंतन करो, मनन करो। भिक्षासन तो छोड़ो, वो जो पहले भी कह चुके हैं वही दोबारा कह रहे हैं। भिक्षासन परमात्मा के चिंतन में डूब जाओ, जो मिले वो खा लो, छोड़ो। दीक्ष परिभ्रमण था, एक जगह टिको मत, जहां चिपकोगे वहीं झंझट शुरू हो जाएगी। भ्रमण करो मस्ती के साथ, कॉपी न बनता खल भाग्य बनता। यदि पंचकम आपने सुना, अंत में क्या कहा भगवान ने, पंचाक्षरम बोलिए ना, पंचाक्षरम क्या लिखा है, पावनम उच्चरंता। तो प्रेम से पंचाक्षर यानी नमः शिवाय था, जप कीजिए, उच्चारण कीजिए, गाइए। गाएंगे आप हमारे साथ, आज सोमवार है, पूर्णावती है, प्रेम के साथ गाइए।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
भाव से प्रेम से अनुराग से गाइए आज।
ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय,
आनंद से भाव विभोर होकर।
ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः, नमः शिवाय, शिवाय नमः, नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय। शिवाय नमः, नमः शिवाय, जय हो। शिवाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, नमः शिवाय, प्रेम से गाइए सब लोग।
पंचकम संपूर्ण हुआ, जो भी हमने सीखा उसको हम जीवन में लाने का प्रयास करें, और जो कुछ भी गलत लगा हो उसको मेरी दृष्टता समझ करके और उसे भूल जाए, अच्छा लगा वो हमारे गुरुजनों का प्रसाद समझ करके स्वीकार करें और मस्त रहें, आनंद हो। अरे हाँ, एक चीज और, फरवरी में फिर आ रहा हूं आप लोगों को तंग करने के लिए। 16 फरवरी से न, 16 फरवरी से 28 फरवरी तक रहेंगे, और विषय हमने अभी से निश्चय किया है भगवान शंकराचार्य के द्वारा ही रचित श्री कृष्णाष्टकम, आपने जरूर सुना होगा, भजे व्रजैक मंडनम, उस पर हम प्रवचन करेंगे।
हरिओम, पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन। महाराज जी, आज सोमवार है, भादोपद एकादशी है, श्राद्ध पक्ष 11 है, सभी शुभ आज है, और आज शुभ पूर्णावते भी महाराज जी के प्रातः प्रवचन की हुई है। यति पंचकम बहुत ही सुंदर विषय पूज्य महाराज जी ने जो प्रवचन के माध्यम से लिया, महाराज जी ने एक बहुत सुंदर बातें बताई कि अगर गीता अध्याय के एक एक श्लोक मुझे एक एक अध्याय में मिल जाए, महाराज जी कहने का मतलब है महाराज जी जो चुनेंगे कोई भी श्लोक वह पूरा अध्याय का दर्शन होगा। तो दर्शन में जो बात है हमारे शास्त्रों में, अमुक अमुक शब्द बहुत ही सुंदर है, दर्शन है, शरणागति है। जीवन में अगर हम लोग थोड़े थोड़े ये सीख जाए, छोटे छोटे शब्द हैं, हम लोग हो सकते हैं कि जो ब्रह्म वाक्य तक पहुंच न सके, मगर यह छोटे शब्द भी अगर धीरे धीरे उतरते जाए तो वह मंजिल दूर नहीं जब तक हम पहुंच सकेंगे। जो हम स्वाध्याय में ब्रह्म सूत्र में वगैरह में हम सुनते हैं उसको हम जीवन में उतार सकेंगे, मगर हमें दर्शन नहीं आता। हमें दर्शन की खोज है, और ऐसे संत हमारे बीच में आते हैं, भजन रस से भी हमें भर देते हैं और प्रवचन रस से भी भर देते हैं। तो महाराज जी की पुनीत वाणी हमें हमेशा प्राप्त रहे, और माता जी संविदा बहुत अच्छा लगता है, और हाँ अभी आ ही रहे वहां तो, और तबले पर जो देव भाई थे, जिंदगी में ताल न हो तो हम बेताल हो जाते हैं, तो जो ताल देने वाले हैं उनका महत्व ज्यादा है, तो उनको भी आप सबकी तरफ से वंदन करते हैं। महाराज जी जब भी आप आते हैं तो यह तो हमेशा रहता है कि एक उत्सव का वातावरण तो है ही है, मगर एक अंदर से ऐसा लगता है कि दर्शन से हम लोग तृप्त हो जाते हैं। आपका अभिवादन करने के लिए मैं माता जी को विनती करूंगा कि आप पधारे। हरिओम।